का था, रूह वही रूप नया।
दोस्तों आप सुन रहे हैं भीष्म साहनी की रचित एक रोमांटिक कहानी। आज से लगभग 80 साल पहले की बात है, उस जमाने की बात है जब पंजाब में सिखों की अमलदारी को खत्म हुए बरसों बीत चुके थे और अंग्रेजों की अमलदारी जड़ जमा रही थी। हमारे कस्बे के बहुत से लोग खेती बाड़ी छोड़कर व्यापार और सरकारी नौकरी के लोभ से खिंचे हुए कस्बे के बाहर जाने लगे थे। कस्बे की दुकानों पर विलायती छींट बिकने लगी थी। इक्के तुक्के पादरी भी सफेद बाना पहने कस्बे की गलियों में घूमते बच्चों को बताशे बांटते नजर आते थे। कस्बे की तंग अंधियारी गलियों में लोगों के पुश्तैनी मकान टूट फूट रहे थे। जगह जगह मलबे के ढेर लगे रहते। किसी घर की दीवारें टूट चुकी होती लेकिन दरवाजे पर ताला चढ़ा रहता। गलियों में कुत्ते घूमते हैं और खंडहरों में सांप रेंगते थे। इन टूटी फूटी सुनसान गलियों में अब भी वे लोग रह रहे थे जो पुरखों की जमीन जायदाद से चिपके हुए थे और जमीन से प्राप्त होने वाली 2 जून रोटी से संतुष्ट थे। इन लोगों का रहन सहन अब भी वैसा ही था जैसा शताब्दियों से चला आ रहा था। कस्बा अब भी जात पात के मुताबिक अलग अलग मोहल्लों में बंटा था। तेली, कुंभी, जुलाहे लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे। लड़कियों के ब्याह 9-9, 10-10 बरस की उम्र में हो जाते थे। आए दिन बीमारियां फैलती थीं और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए काफिले चला करते थे। देश भर में जमाना एक नई करवट ले रहा था, मगर लगता था जैसे हमारे कस्बे को अतीत का मरकट समझकर छोड़े जा रहा हो। पर ऐसे टूटे फूटे मृत प्राय कस्बे में जिंदगी की लौ बिल्कुल बुझी नहीं थी। कस्बे के बच्चे खंडरों में ही छिपा लुकी खेलते, लड़कियां चांदनी रात में किरकलियां डालती, कभी कभी ढोलक भी बजती, कहीं प्रेम के किस्से सुनने में आते। उन्हीं दिनों कस्बे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल भी खुला था और कस्बे की सबसे सुंदर लड़की रुक्मणी ने अपना नाम भी उसमें लिखवाया था। दादी उस जमाने की बहुत सी बातें सुनाती हैं और सुनाते हुए अक्सर रिश्तेदारों की लंबी व्याख्या में उलझ जाती हैं।
तुम्हारे परदादा के चचेरे भाई का दामाद और उसकी मौसेरी बहन की सास की जेठानी इत्यादि।
रुक्मणी का नाम हमने दादी के मुंह से कई बार पहले भी सुन रखा था, विशेषकर एक पागल के सिलसिले में जो दिन भर स्कूल के सामने डोलता और जगह जगह से रंगदार थिगलियां चुनता रहता। और रुक्मणी झूठी है कि एक ही वाक्य की रट लगाए रहता। बार बार बताए जाने पर भी कि रुक्मणी कब की मर चुकी है, उसके मन में ये बात नहीं बैठती और वह रोज वहीं पहुंच जाता था। हमें इसमें रोमांस का रंग नजर आता और हम दादी से आग्रह किया करते कि वह हमें रुक्मणी की कहानी सुनाए। दादी बताती हैं कि कस्बे में कोई बीमारी फैली और रुक्मणी के माँ और बाप दोनों मर गए। उस वक्त रुक्मणी की उम्र कोई 10 या 11 बरस की रही होगी। एक ब्राह्मण जो उसी गली में रहा करता था और उसके घर का पुरोहित था, रुक्मणी को अपने घर ले गया। दादी जब भी उस ब्राह्मण की चर्चा करती तो बड़ी घृणा से उसे मुआ ब्राह्मण कहकर पुकारती। रुक्मणी के माँ बाप की मृत्यु को कुछ एक दिन बीते होंगे कि मुए ब्राह्मण ने रुक्मणी का ब्याह रचा दिया। दादी कहती हैं उन दिनों उसी उम्र में ब्याह हुआ करते थे। 10 की लड़की हो तो ब्याह शादी के लिए माँ के पेट के 9 महीने मिलाकर उसकी उम्र 11 बरस मानी जाती थी। रुक्मणी की सगाई पहले ही खुकराइनों के मोहल्ले में हुई थी। दीवान मायादास का घर कस्बे में अच्छे खाते पीते घरों में से था। उसके 3 कुएं थे और कस्बे के ऐन बीच में एक बहुत बड़ी माड़ी थी। दीवान मायादास के 2 ही बेटे थे। रुक्मणी की सगाई छोटे बेटे से हुई थी। बड़ा किसी काम का नहीं था, उसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे और दिन भर खाट पर पड़ा रहता था। दीवान मायादास बारात लेकर आए पर जब लग्न का वक्त आया तो दूल्हे का कहीं पता न चला। ब्राह्मण वेदी पर बैठा चिल्लाने लगा कि लग्न का समय निकला जा रहा है, जो टल गया तो विवाह नहीं हो सकेगा। एन जब पौ फटने लगी तो दीवान मयादास ने अपने मिर्गी वाले बेटे को वेदी पर बिठा दिया। अंदर ही अंदर मुए ब्राह्मण ने साज बाज कर रखी थी। इस तरह रुक्मणी की शादी हुई और दीवान मयादास उसके माँ बाप की अच्छी खासी पूंजी समेट कर घर ले गए। न मालूम ब्राह्मण को बीच में क्या मिला, पर रुक्मणी को मिर्गी वाले के गले मर दिया गया। बुरा हुआ, दादी कहती, पर बुरा नहीं हुआ। रुक्मणी ठिकाने तो लग गई। जो ब्याह ना होता तो यतीम लड़की थी, न जाने उसकी क्या गति होती। दादी के सभी तर्कों का ऐसा आधार होता है। मयादास ने बहुत बुरा काम किया, लेकिन अपनी जगह उसने भी ठीक सोचा था। छोटा तो तंदुरुस्त था, उसे तो लड़की मिल जाती, मिर्गी वाले को लड़की कौन देता, पर उसका घर भी तो बसाना था। मिर्गी वाला सारा वक्त खाट पर पड़ा रहता, पर जब उसे दौरा पड़ता तो वो घर के दरवाजे भी तोड़ डालता और जो हाथ लगता उसी से घर के लोगों को पीटने लगता था। उम्र में वो रुक्मणी से काफी बड़ा था। दीवान मयादास की पत्नी मर चुकी थी, केवल दो बेटे थे। उसका अपना परिवार तो बहुत छोटा था, लेकिन घर में बहुत लोग रहते थे। घर के ऐन बीचों बीच ऊंची दीवार थी। एक हिस्से में मयादास का परिवार रहता था और दूसरा उसके चारों भतीजों का था। दादी उन चारों भाइयों को भी कलमुहे लुच्चे कहकर पुकारती थी। दादी कहती हैं उनमें से केवल एक ही अच्छा निकला और वो यही था जिसके साथ बाद में दादी की अपनी शादी हुई थी। इस तरह रुक्मणी कसाईयों के घर पहुंच गई, पर जिंदगी बड़े रंग बदलती है। दादी कहती है कि शादी के 2-3 दिन बाद एक दिन वो अपनी माँ के साथ दीवान मयादास की माड़ी के सामने से गुजर रही थी, जब माड़ी के अंदर से बड़ा शोर सुनाई दिया। मिर्गी वाले को दौरा पड़ रहा था। देखते देखते 2-3 आदमी गालियां बकते घर में से निकले और दूसरे क्षण मकान की छत पर वो मिर्गी का रोगी दिखाई दिया। दादी कहती हैं कि उसकी माँ थर थर कांप रही थी और उसे हाथ में पकड़कर घसीटती हुई सामने मैदान की ओर ले जा रही थी। छत पर खड़ा वो पागल मुंडेरों पर से ईंट तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगा। एन उसी वक्त रुक्मणी भी भागती हुई बाहर आ गई। छोटी कोमल सी लड़की, अब भी उसने ब्याह के लाल कपड़े पहन रखे थे और हाथों और पांवों पर मेहंदी का रंग था। वो ऊपर मुंह उठाए अपने पागल पति की ओर देखने लगी। दादी कहती है कि रुक्मणी को देखकर पागल ने ईंट फेंकना बंद कर दिया। न मालूम पागल के अंदर कोई भावना जागी या उसे मासूम पर रहम आ गया, उसने ईंटें फेंकना बंद कर दिया। थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर वहां से हट गया। दादी कहती हैं कि यह दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इसके बाद जब भी कभी उसे दौरा पड़ता और वो आपे से बाहर होकर घर वालों से मारपीट करता तो रुक्मणी के सामने आ जाने पर या उसके मना करने पर फौरन रुक जाता था। किस्मत की बात, पागल अपनी पत्नी के हक में अच्छा निकला और उस घर में केवल ये एक ही व्यक्ति था जो रुक्मणी के हक में अच्छा था। आए दिन जो घर में कोहराम मचा करते थे वे कम होने लगे और दीवान मयादास की नजरों में भी बहू की साख बढ़ने लगी। दादी सुनाती हैं कि इसके शीघ्र ही बाद वह अपनी माँ के साथ किसी काफिले में दूर शहर चली गई और कुछ साल तक उन्हें रुक्मणी की कोई खबर नहीं मिली। पर इसी बीच पहले रुक्मणी के देवर की, जिसके साथ रुक्मणी की सगाई हुई थी, और कुछ अरसा बाद दीवान मयादास की भी मौत हो गई और पीछे केवल पागल और रुक्मणी रह गए। छोटे बेटे की मौत के बाद से ही मयादास बीमार रहने लगे थे और धीरे धीरे खाट के साथ जुड़ते जा रहे थे। उधर रुक्मणी बड़ी हो रही थी और उसका रूप निखर रहा था। दादी ही नहीं, हमारी जात बिरादरी की सभी बड़ी बूढ़ियां रुक्मणी के रूप की बड़ी चर्चा करती हैं। दादी तो एक ही वाक्य बार बार कहती हैं कि रुक्मणी इतनी सुंदर थी कि हाथ लगाने पर मैली होती थी। दीवान मयादास के भतीजे बड़े आवारा लड़के थे, आवारा और बदमाश। मोहल्ले की क्या, कस्बे भर की औरतें उनसे थर थर कांपती, मुंह छुपाती फिरती थी। उनमें से भी हरि नारायण बहुत बुरा था। रुक्मणी कभी आंगन में आकर बैठती तो वो खिड़की से सांप के फन की तरह सिर निकालकर खड़ा हो जाता, कभी कंकड़ फेंकता, कभी आवाजें कसता था। दीवान मैयादास हताश आंखों से कभी खिड़की की ओर देखते, कभी अपने पागल बेटे की ओर, आखिर वो तड़प तड़प कर मर गए। सबको अपने किए का फल मिल जाता है। दादी तर्जनी उठाकर और सिर हिलाकर वो निष्कर्ष निकालती और साथ में अपने तर्कानुसार ये भी जोड़ देती, मैयादास आदमी बुरा नहीं था, केवल लालची बहुत था। उधर दीवान मैयादास की देह फूंक कर आए, इधर इन भाइयों ने रुक्मणी का जीना दूभर कर दिया। हरिनारायण तो सीधा आंगन में घुस आता और तरह तरह की बकवास करता। रुक्मणी चुपचाप अपनी कोठरी में बनी रहती और पागल सामने खाट पर पड़ा रहता। दादी कहती हैं कि वो बचपन से ही बड़े धैर्य वाली थी, बड़े दृढ़ स्वभाव की थी। फिर एक दिन न जाने रुक्मणी को क्या हुआ, सुबह ही सुबह घर से निकल गई और स्कूल में जाकर अपना नाम लिखवा आई। उन्हीं दिनों आर्य समाजियों ने कस्बे में लड़कियों का पहला स्कूल खोला था। रुक्मणी नाम तो लिखवा आई, लेकिन जब घर वालों को पता चला तो उनके कान खड़े हो गए। चारों लुच्चे इसे बेपर्दगी और बेहयाई कहकर रुक्मणी के पीछे पड़ गए। वही हरिनारायण जो खिड़की में खड़ा होकर आवाज कसता था और कंकड़ फेंकता था, अब रुक्मणी को फटकारता। ससुर मर गया है पर हम नहीं मर गए हैं, अगर फिर घर से बाहर कदम रखा तो हम टांग तोड़ देंगे। कोई शर्म हया है या नहीं, हरजाइयों की तरह बाजार में घूमने लगी है। पर रुक्मणी ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा। दूसरे दिन वो फिर घर से निकल गई और स्कूल जा पहुंची। जब भाइयों को पता चला तो वे लठ लेकर स्कूल के बाहर आ खड़े हुए, लोग इकट्ठे हो गए। पर ये रुक्मणी के हक में अच्छा हुआ, क्योंकि कुछ एक ने भाइयों का विरोध किया, पर रुक्मणी का स्कूल जाना एक तमाशा बन गया था। कभी देवर दरवाजे बंद कर देते, कभी घर के सामने खड़े हो जाते, कभी कभी शोर सुनकर मिर्गी वाले को दौरा पड़ जाता। इससे घर में कोहराम मच जाता। कभी कभी उसका नीप पागल पति हाथ में डंडा उठाए पैंतरे बदलता, लोगों से उलझता रुक्मणी के पीछे पीछे जाने लगता और स्कूल तक पहुंच जाता। गली बाजार के लोग उसके साथ मस्खरियां करते, कोई उसका डंडा खींच लेता, कोई कंकड़ फेंकता और रुक्मणी बेचारी खून के आंसू रोती हुई घूंघट काढ़े बाजार लांग जाती और स्कूल में घुस जाती। इन हालातों में रुक्मणी की पढ़ाई हुई। एक एक दिन दादी कहती हैं तलवार की धार पर चलने के बराबर था, उसे भगवान ने बड़ा धैर्य दिया था। रुक्मणी स्कूल के अंदर चली जाती तो पागल कभी स्कूल के बाहर डोलता, कभी बाजारों में घूमता रहता और सनक उतरने पर घर लौट जाता। संसार में सहृदयी लोगों की कमी नहीं होती। गली बाजार वालों ने स्थिति समझ ली और हंसना मजाक करना बंद कर दिया। गलियों में से रुक्मणी घूंघट काढ़े निकलकर आती और पीछे उसका नीम पागल पति नाचता छड़ी हिलाता आता तो भगवान से डरने वाले लोग हाथ जोड़ देते और मन ही मन कहते, ऐसा दिन देखना किसी को नसीब ना हो। स्कूल वालों ने भी रुक्मणी की पीठ पर हाथ रखा। आर्य समाजियों का स्कूल था जो, दादी कहती हैं, स्त्रियों के हक में अच्छे थे। उस वक्त रुक्मणी की उम्र 16 या 17 वर्ष की रही होगी। उसने 3 या 4 जमाते पास कर लिए। उन दिनों ये भी बहुत माना जाता था और स्कूल वालों ने उसकी स्थिति को देखकर उसे स्कूल में अध्यापिका बना लिया। और दादी कहती हैं रुक्मणी सुखी हो गई, मतलब कि वो अपने पांवों पर खड़ी हो गई, खुद मुख्तार हो गई। इसी बीच उसने माड़ी में रहना भी छोड़ दिया और पति को लेकर स्कूल के सामने एक कोठरी में रहने लगी। देवर घात लगाए बैठे थे कि कब पागल मरे और वे पूरी माड़ी हत्याएं। पर जब पागल नहीं मरा और वे रुक्मणी पर अपनी हुकूमत नहीं चला पाए तो उन्होंने रुक्मणी को कहला भेजा कि हम तुम्हारा महीना बांध देते हैं, हम चारों भाई 2-2 रुपए हर महीने तुम्हें दिया करेंगे, तुम मकान का अपना हिस्सा हमारे नाम लिखवा दो। रुक्मणी ने मकान लिखवा दिया और माड़ी वाले दीवान मैयादास की बहू एक बेघर पागल की पत्नी बनकर रह गई। कितने दिन तक उन्होंने उसे पैसे दिए भी या नहीं दिए दादी नहीं जानती। दादी केवल इतना जानती हैं कि रुक्मणी सुखी हो गई कस्बे की बीसियों लड़कियों को उसने पढ़ाया। उसका पागल पति अब भी उसके इशारों पर चलता, जहां बैठ जाता वहीं बैठा रहता, और जब सनक उठती तो गली बाजार से लाल पीली रंग बिरंगी थिगलियां और लीरें चुन चुन कर ले आता और रुक्मणी को देता। कभी दौरा पड़ता तो बाजारों में भागता फिरता, और रुक्मणी स्कूल से लौटने पर उसे कभी एक बाजार में तो कभी दूसरे बाजार में ढूंढती फिरती। पर दादी कहती हैं रुक्मणी सुखी हो गई थी। सच कहें तो ये रुक्मणी के सबसे सुखी दिन थे, और अब वो लंबी आयु पार कर पूरे 25 बरस की हो चली थी। इसी बीच स्कूल और कस्बे के पढ़े लिखे सयानों ने रुक्मणी को मशवरा दिया कि अपने पति को लाहौर के पागलखाने में भर्ती करवा दे, इससे शायद वो संभल जाए, और रुक्मणी ने ऐसा ही किया। पति को समझा बुझाकर वो एक काफिले में उसे लाहौर ले गई और पागलखाने में दाखिल करवा आई। जो एक बार वो तंदुरुस्त होकर लौट आए और वो भी अन्य लोगों की तरह घर गृहस्थी चला पाए, तो उससे बढ़कर रुक्मणी को क्या चाहिए था। वो बड़ी बेताबी से उसके स्वस्थ हो जाने का इंतजार करने लगी। उन दिनों लोगों को क्या मालूम था कि पागलखानों में भी पागलों के इलाज में बरसों लग जाते हैं। पर दादी कहती हैं कि सच पूछो तो जब से रुक्मणी उसे छोड़कर लौटी थी और अपनी कोठरी में कदम रखा था, उसी दिन से उसका मन उदास हो गया था, और अंदर ही अंदर जैसे उसे लगा था कि वह लौटकर नहीं आएगा। जीवन में पहली बार अब वो अपने को निराश्रित और अकेली महसूस करने लगी थी। दादी कहती हैं कि अंदर ही अंदर उसका मन उछट गया था। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न सास, न ससुर, एक पागल ही था जो उसका अपना था। जब वो था तो रुक्मणी का घर था, गृहस्थी थी, और जब वो नहीं रहा तो मानो उसकी जिंदगी की टेक ही टूट गई। पर अब उसे बहुत इंतजार करना वदा नहीं था, क्योंकि इसके 2-3 साल बाद ही रुक्मणी मर गई। दादी कहती है कि अब छुट्टी होने पर वो तीर्थों पर जाने लगी थी। जब कोई छड़ी जाती और उसे छुट्टियां होती तो वो साथ हो लेती, और एक बार अमरनाथ की यात्रा पर गई तो लौट कर नहीं आई। दादी कहती हैं उन दिनों सड़कें तो थी नहीं, कच्चे रास्ते से लोग पानी बरसात में जाते थे, सैकड़ों मर जाते थे। कहीं बारिश हुई होगी, कच्ची पहाड़ी पर से कोई चट्टान गिरी होगी और रुक्मणी उसके नीचे कुचल गई होगी। भाग्य अच्छे थे, दादी कहती है, जो वो तीर्थों पर मरी। उसकी उम्र कुछ ना रही होगी तो 30 तो जरूर ही रही होगी, और उसके पति का क्या बना। दादी कहती है कि वो सचमुच लौट आया, पहले से बहुत कुछ संभल गया था, केवल मामूली सी सनक बाकी रह गई थी। पर जब वो स्कूल के बाहर पहुंचा और उसे पता चला कि रुक्मणी वहां नहीं है, तो उसके मन को धक्का लगा और वो फिर भटक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो मर गई है। उसने वही समझा कि वो उसे छोड़कर चली गई है, और वो फिर गलियों बाजारों में रंग बिरंगी थिगलियां बटोरने लगा और एक ही वाक्य की रट बार बार लगाने लगा, रुक्मणी झूठी है। कस्बे के मन चले उसे चिढ़ाते रहते, वो देख रुक्मणी आ रही है। वो घूमकर देखता और फिर अपनी अदा में कह देता, रुक्मणी झूठी है, और अपनी रंग बिरंगी थिगलियों को सहलाने लगता। दादी कहती हैं उन्होंने एक बार उसे देखा भी था, पर अपने कस्बे में नहीं, किसी दूर कस्बे में वो थिगलियां बटोरता घूम रहा था।